ये है साजो आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7/365। आप साजो आवाज को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं www.eawaz.com या ई आवाज ऑफिशियल ऐप एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर पर, या फिर लोकल फोन लाइन पर सुनने के लिए अभी डायल करें 647-557-1017। हमारे साथ शामिल रहिएगा, हमेशा की तरह आज भी दिलकश प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। हम आपकी कीमती आरा के मुंतजिर हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं arifa@eawaz.com। प्रोग्राम का आगाज करते हैं बीबीसी उर्दू न्यूज से सेरवीन के साथ।
जुमेरात 6 जून, बीबीसी के प्रोग्राम सेरवीन के साथ मैं हूं नादिया सुलेमान। सूडान में जारी बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली, दर्जनों अफराद हलाक। क्या तनाज़े के हल में बैन अल-अक़वामी बरादरी का किरदार मुमकिन है? नामा निगार बोले,
They are really under the influence of Saudi Arabia. There are lots of different international kind of aspects to what's going on in Sudan at the moment.
Pashto zuban mein rap music banane wala pehla Pakistani band, lekin ye khayal unhe aaya kaise? Mausiqar bole,
humne kaha ki hum apne culture ko represent karein. Baat ye hai ki aajkal ki jo new generation hai, mainstream music uske sath zyada connect kar sakti hai, aur usme agar hum message laye aur wo bhi Pashto mein, obviously wo zyada spread hoga.
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں سنیے ساتھ سہیل سے۔
افریقی کونسل نے سوڈان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ کونسل کے حکام کا موقف ہے کہ بحران سے نکلنے کا یہ واحد حل ہے۔ سوڈان کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ پیر کو ہونے والی پرتشدد کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 50 مظاہرین کی ہلاکت ہوئی ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد اس سے کئی زیادہ ہے اور یہ اعداد و شمار حقائق کے منافی ہیں۔ روس اور چین نے تجارت اور سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ روس کے 3 روزہ دورے پر ماسکو میں موجود ہیں۔ امریکہ اور چین میں تجارتی مہاذرائی کے پیش نظر روس اور چین میں مزید قربت دیکھی جا رہی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ دونوں ممالک میں تعلقات اور بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ڈینمارک میں بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والی جماعت سوشل ڈیموکریٹس کی سربراہ میٹے فریڈرکسن نے بدھ کو ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد کہا کہ ان کی جماعت نئی حکومت قائم کرے گی۔ 41 سالہ میٹے فریڈرکسن ملک کی کم عمر ترین وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک اعلان میں کہا ہے کہ ان کی اسپیشل فورسز نے طالبان کے قائم کردہ ایک قید خانے پر حملہ کیا ہے۔ افغانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ بازیاب کرائے جانے والے 84 قیدیوں میں سیکیورٹی اہلکار، دولت اسلامیہ کے جنگجو سمیت دیگر غیر ملکی جنگجو شامل تھے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہرنائی میں انتظامیہ کے مطابق دونوں اہلکار معمول کی گشت کے دوران خوست کے علاقے میں نشانہ بنے۔ اس حملے کی ذمہ داری کلاتم جماعت بلوچ لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ آسٹریلیا میں پولیس کے حکام نے کہا ہے کہ خبر رساں ادارے اے بی سی کے دفتر پر نیشنل سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر چھاپا مارا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہے تھے ساتھ سہیل۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی کرکٹر آصف علی کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جارحانہ بیٹنگ سے ورلڈ کپ میں ٹیم کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ آصف علی کا تفصیلی انٹرویو پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ سوڈان کے حکام نے تسلیم کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جمہوریت کے حق میں احتجاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سوڈان میں ایک ہفتے کے دوران پہلی بار حکام کی جانب سے باضابطہ طور پر ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی۔
सूडान में डॉक्टरों की मरकजी कमेटी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा मुजाहिरीन हलाक हो गए हैं, जबकि एहतजाज में शामिल एक ग्रोह के मुताबिक दरियाए नील में बुध के रोज 40 लाशें निकाली गयी और अब भी मजीद लाशें मिलने का खदशा है। दूसरी जानिब आगाज में खामोश रहने के बाद अब सूडान के वजीर सेहत का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद से हलाक होने वालों की तादाद 46 हो गई है। फौजी काउंसिल के नायब सरबराह ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इस इकदाम का दिफा करते हुए कहा कि मुजाहिरीन में कुछ दुश्मन अनासर और मंशियात फरोश मौजूद थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हिज़्बे मुखालिफ के एक कारकुन हाफिज मोहम्मद ने BBC को बताया,
The regime realized that they have committed grave mistakes and now they're trying to come out with...
सियासत को अब ये एहसास हुआ है कि उन्होंने संगीन गलती की है। अब वो कोई जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वजारत सेहत की जानब से दिए गए अदाद शुमार भी हकायक के मुनाफी हैं, क्योंकि अब भी बहुत से अफराद लापता हैं। हम हलाकतों की सही तादाद का तयन नहीं कर सकते, हो सकता है कि इनकी तादाद 100 से भी ज्यादा हो।
गुज़श्ता रोज अबूरी फौजी काउंसिल के सरबराह ने कौम से खिताब के दौरान कहा था कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताहम सूडान के हिज़्बे मुखालिफ ने फौजी काउंसिल से बातचीत की पेशकश को आज मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वालों पर यकीन नहीं किया जा सकता। एमएनएसटी इंटरनेशनल अफ्रीका नेट सेनेट बलाय ने BBC को बताया कि फौजी हुक्काम की जानिब से इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए कोई मौजदा सामने नहीं आया है।
There doesn't seem to be any sign of de-escalation. Internet channels are shut down.
कशीदगी में कमी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। इंटरनेट और दूसरी सर्विसेज बंद हैं और हमें जिंसी तशद्दुद और ज्यादती की खतरनाक इत्तलात मिल रही हैं। आलमी बरादरी की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे के अलावा अभी तक अबूरी फौजी काउंसिल की तरफ से कोई मानी खेज इकदाम नहीं किया गया है।
खरतूम में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार शहर में गश्त कर रहे हैं और शहरियों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार सूडान के दूसरे बड़े शहर उमडरमान की सड़कों पर मौजूद हैं, जो कि दरियाए नील की दूसरी जानिब वाक़े है।
सूडान में जारी बहरान की तफसील बता रही थी नाज़िश फैज़। इसी मौजू पर बात करने के लिए मैंने सूडान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए BBC के नामा निगार विल रोज से राबिता किया और उनसे पूछा कि सूडान में हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन मुजाहिरीन का मुतालिबा है क्या?
Well, basically, this is all about the protest movement pushing.
दरअसल ये एहतजाज फौज को इक्तदार से हटाने के लिए किया जा रहा है। ये एहतजाज गुज़श्ता साल दिसंबर में शुरू किया गया था। सूडानी अवाम को मुल्क में जारी माशी बहरान के बायस शदीद गुस्सा था और लोग उमर अल बशीर की हुकूमत से तंग आ गए थे, जो कि तकरीबन 30 साल से इक्तदार पर थे। उसके बाद ये हुआ कि उमर अल बशीर को माजूर कर दिया गया और उनके सब साथियों से इक्तदार लेकर फौज ने संभाल लिया और अब इस एहतजाज का मकसद अवामी हुकूमत को इक्तदार मुंतकिल करना है। फौज और हिज़्बे मुखालिफ के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात हुए जिसमें कुछ मुआहदे किए गए मगर वो भी खत्म कर दिए गए। लिहाजा ये बात साफ है कि फौज इक्तदार से हटने के लिए तैयार नहीं।
मिलिट्री इज अनविलिंग टू गिव अप पावर।
अब आगे क्या होगा? फौज ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी जिसको हिज़्बे मुखालिफ ने मुस्तरद कर दिया है, तो हिज़्बे मुखालिफ का मुतालिबा है क्या?
So there've been very mixed messages from all sides, really.
अब हर तरफ से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। एक वक्त में फौज का कहना था कि अब मजीद बातचीत नहीं की जाएगी और 9 माह के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे, लेकिन इसके बाद फौज के हमायती मुल्क सऊदी अरब की जानिब से दबाव डाला गया, जिसके बाद फौज ने यूटर्न लिया कि वो एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुजाहिरीन में से बाज़ लोग इस कदर गुस्से में हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल में दोबारा बात करना नहीं चाहते। लिहाजा कुछ मुजाहिरीन मुजाकरात के लिए तैयार नहीं, जबकि बाज़ का मुतालबा है कि पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों को सड़कों से हटाया जाए ताकि वो लोग खौफ महसूस न करें। ये बताना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। हिज़्बे मुखालिफ का कहना है कि फौज की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे और फौज से छुटकारा हासिल कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा।
इसका मतलब है कि हम मुस्तकबिल में भी ये मसला हल होता हुआ नहीं देख रहे। अगर इस मसले के हल में सऊदी अरब आगे आता है तो भी
So there doesn't seem to be a simple solution to this. No.
Iska koi khas hal nikalta nazar nahi aa raha kyunki Sudan mein aalami mufaad paya jata hai. Bahut se logon ki nazrein Sudan par hain. Saudi Arab, Mutahida Arab Amirat aur Misr ki janib se Sudani fauj ka saath diya ja raha hai kyunki wo Sudan mein awami hukumat nahi chahte. Magar European Union, African Union aur America Sudan mein awami hukumat ke liye zor de rahe hain. Lihaza in sab mein se ahem بات یہ ہے کہ سوڈان کی معیشت بحران کا شکار ہے اس وجہ سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سوڈان کی مالی معاونت کر رہے ہیں سوڈانی فوج پر سعودی عرب کا دباؤ ایک اور وجہ سے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کئی ہزار سوڈانی فوجی یمن میں سعودی عرب کے فوجی اتحاد کا حصہ ہیں تو سوڈان میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کئی عالمی پہلو پوشیدہ ہیں
نامنگار ویل روز چین کے صدر شی جن پنگ کے روس کے اہم دورے کے دوران کئی اہم معاہدے طے پائے ہیں اس دورے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے امریکہ اور مغربی ممالک سے کشیدہ تعلقات کے تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو اہم سمجھا جا رہا ہے صدر شی جن پنگ کے دورہ روس کی تفصیل سنیے فرحت جاوید کی رپورٹ میں
چینی صدر شی جن پنگ روس کے 3 روزہ دورے پر ہیں جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی جا رہی ہے اس موقع پر چینی صدر نے اپنے روسی ہم منصب کو اپنا بہترین دوست قرار دیا ہے بدھ کو روس پہنچنے کے بعد ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ان کی ذاتی دوستی بہت گہری ہے
ہمارے باہمی تعلقات پہلے ہی بہتر ہیں مگر ان کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے ہم روس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم دونوں ممالک اعلیٰ سطح کے تعاون کو مسلسل فروغ دیں اور ہمارا تعاون ہمارے لوگوں کو کامیابی کا ایک احساس دے
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ انہیں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج روس اور چین کے درمیان تعلقات اس بلند سطح پر استوار ہو چکے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک گلوبل پارٹنرشپ ہے اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی تعلق ہے
پچھلے سال ہم نے دو طرفہ اشیاء کی تجارت کے لیے 100 ارب امریکی ڈالر کو عبور کرنے کا ہدف رکھا تھا اور ہماری ٹیم اور حکومت کی کوششوں کی وجہ سے ہم نے ہدف حاصل کر لیا ہے ہمارے پاس 108 ارب امریکی ڈالر موجود ہیں اور اس سال کے پہلے سہ ماہی میں تجارت میں بھی اضافہ ہوا ہے
اس دورے کے دوران دونوں ملکوں میں دفاعی اور تجارتی شعبے میں تعاون کے معاہدے ہوئے ہیں لیکن ان میں سب سے اہم معاہدہ ٹیلی کمیونیکیشن کی سب سے بڑی چینی کمپنی ہواوے کا روس کے ساتھ ہے اس معاہدے کے تحت اب 5G ٹیکنالوجی روس میں بنائی جائے گی یہ معاہدہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب پچھلے ہی ماہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی طرف سے ہواوے پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے کے الزام کے تحت پابندی عائد کی گئی ہے واضح رہے کہ چینی صدر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو چکے ہیں
رخ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا جہاں عید کا دوسرا روز ہونے کے باوجود ٹاپ 10 ہیش ٹیگز میں سب سے زیادہ کرکٹ ہی نظر آئی اور اسی پر میں نے بات کی اپنے ساتھی منزہ انوار سے
سارے کے سارے ہیش ٹیگ جو ہیں جو کرکٹ 10 کے 10 کرکٹ سے ریلیٹڈ ہیں آسٹریلیا وی ویسٹ انڈیز آسٹریلیا ویسٹ انڈیز ورسز آسٹریلیا کارٹل ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز اسٹیون سمتھ
آج میچ کس کا ہے جو اتنا زیادہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے کرکٹ
آج آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے
کوئی کیچ بھی ہے جس کی بڑی بات
بہت اچھا انہوں نے
میں نے تو مس کیا لیکن پکڑنے والے نے کیچ پکڑ لیا
اسٹیون سمتھ کو کافی امید کی کرن سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سنبھال لیں گے آسٹریلیا کی اننگس کو لیکن وہ بھی آؤٹ ہو گئے اور ان کا بہت شاندار قسم کا کیچ لیا ہے شیلڈن کارٹن نے
اچھا کرکٹ کی ہی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اسد عمر وہ انہوں نے بھی کرکٹ پہ کچھ ٹویٹ کی ہے پھر وہ شاید کسی پاکستانی کرکٹر کا جواب بھی آیا تو وہ معاملہ کیا ہے
پاکستان کے جو سابقہ وزیر خزانہ ہیں اسد عمر انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے خصوصی درخواست ہے کہ اس خوشی کے ماحول کو کم از کم چند دن جو ہے نا وہ ایسے ہی رہنے دیں تو اس پہ ان کو بڑا زبردست قسم کا جواب ملا انہیں عامر نے کہا کہ ہم تو پوری کوشش کریں گے آپ بھی پلیز کچھ ایسے کام کریں جس سے پورا پاکستان خوش رہے
تو ادھر سے پھر
आमिर का जवाब आया है।
जी उधर से आमिर का जवाब आया है। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम बहुत अच्छे बॉलर हो तो अब इंडिया के अगेंस्ट तुम इस तरह से कर लेना तो तुम छा जाओगे अगर तुम इस तरह से बॉलिंग करो। मतलब उन्होंने बात बदलने की कोशिश की।
एक और जो बात मुझे सोशल मीडिया पे नजर आई और वो कुछ एक डिबेट सी चल रही है, सहाफी है एजाज हैदर, उन्होंने कोई ट्वीट की है जिसके बाद एक बहस शुरू हो गई है। वो बहस क्या है और पहले तो बताए वो ट्वीट क्या है।
एक्टिविज्म और एकेडेमिया के ऊपर बहस हो रही है कि जो लोग पढ़ाते हैं एक्टिविस्ट होते हैं उनको पढ़ाना नहीं चाहिए या जो पढ़ा रहे हैं उनको एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह की बहस चल रही है। आधे लोग एक साइड पे हैं आधे लोग एक साइड पे हैं। उन्होंने ये ट्वीट की थी कि निदा किरमानी जो लम्स में पढ़ाती हैं और वो डॉक्टर हैं उनके बारे में कहा था कि उनको पढ़ाना नहीं चाहिए
क्योंकि वो एक्टिविस्ट भी हैं।
वो किसी पार्टी की सपोर्ट भी करती हैं तो इस तरह के लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए।
वो ट्विटर पे बाकायदा अपने ओपिनियन दे रही
हैं। काफी एक्टिव हैं और हर चीज के बारे में अपना ओपिनियन भी देती हैं।
यहाँ से अरबी निस्फ को पहुंचा एक वक्फा, उसके बाद खेलों की खबरें और फिर दीगर मौजूदात पर गुफ्तगु करेंगे। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं नाजिया गुलजार। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 10वें मैच में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीम में नॉटिंगम में मद्दे मुकाबले हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 289 रन के हदफ के ताकुब में वेस्टइंडीज की बैटिंग जारी है। इवेंट का 11वां मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल ब्रिस्टल में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लार के मुताबिक टीम बगैर किसी तब्दीली के मैदान में उतरेगी। ब्रिस्टल से हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर।
कल पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ खेल तो रही है लेकिन पाकिस्तान को असल खतरा श्रीलंका के बजाय मौसम से ज्यादा है। यहाँ पर जो पेशगोई की गई है उसके मुताबिक 90% बताया गया है कि बारिश होगी और मैच पर असरअंदाज हो सकती है। लिहाजा पाकिस्तान टीम को अपनी इस तरह की हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि अगर यह मैच मुख्तसर दौरानिया का होता है तो फिर डकवर्थ लुइस का जो फार्मूला अप्लाई होगा तो किस तरह सारी चीजें होंगी, क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल है ये मैच पाकिस्तान के लिए।
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खवातीन के पहले क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की अमांदा अनिसिमोवा ने रोमानिया की सिमोना हालिप को 6-2 और 6-4 से शिकस्त दे दी है, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टे ने अमेरिका की मेडिसन कीस के खिलाफ 6-3 और 7-5 से कामयाबी हासिल की। फुटबॉल में नेशंस लीग के सेमीफाइनल में नीदरलैंड और इंग्लैंड की फुटबॉल टीमें आज मैदान में उतरेंगी। इंग्लैंड के मैनेजर ने अपनी टीम पर जोर दिया है कि वो ट्रॉफी जीतने के मौके से फायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश करें।
सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद हमारा एतमाद बढ़ा है, टीम ने बहुत मेहनत की है और अब वो ट्रॉफी जीतने के लिए कोशा है।
हॉकी प्रो लीग में मर्दों के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी की टीमें लंदन में मुकाबले आ रही हैं। खेलों की खबरें आपने सुनी नासिया गुलजार से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच जुमे को श्रीलंका के खिलाफ ब्रिस्टल में खेलेगी। पाकिस्तानी बैट्समैन आसिफ अली का कहना है कि वो चाहते हैं कि अपनी जारहाना बैटिंग से टीम के लिए कारामद साबित हो। आसिफ अली की बीबीसी से खुसूसी गुफ्तगू।
जिस चीज के लिए मुझे टीम में रखा गया है और मेरा रोल ही है हिटिंग करना, और डिफिकल्ट तो नहीं है, बाकी जो मेरी नेचुरल गेम है वो अपनी गेम खेलने की कोशिश करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि मेरी जो परफॉर्मेंस है जो मेरे रन है वो टीम के लिए जो फायदेमंद हो सके मैं उतनी कोशिश करता हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट करता हूँ कि जितना टोटल हो सके लास्ट ओवर में हिटिंग करके। आपने सीरीज में देखा होगा इंग्लैंड की मुझे अर्ली ओवर्स मिले, ज़्यादा ओवर मिले हैं, 20 से 25 ओवर मिले और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने रन भी किए हैं दोनों मैचों में 50 किए, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है मुझे, बल्कि वो भी इजी है क्योंकि आप ऊपर से नीचे आएंगे फिर हिटिंग करना आसान होता है, ना कि एकदम से जाके लास्ट ओवर में हिटिंग करना। कोशिश ये करता हूँ जो भी रोल देते हैं उसके मुताबिक खेलूँ और आप देखेंगे जिस चीज़ के लिए मुझे टीम में रखा गया है और मेरा रोल ही है हिटिंग करना, और डिफिकल्ट तो नहीं है, बाकी जो मेरी नेचुरल गेम है वो अपनी गेम खेलने की कोशिश करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि मेरी जो परफॉर्मेंस है जो मेरे रन है वो टीम के लिए जो फायदेमंद हो सके मैं उतनी कोशिश करता हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट करता हूँ कि जितना टोटल हो सके लास्ट ओवर में हिटिंग करके। आपने सीरीज में देखा होगा इंग्लैंड की मुझे अर्ली ओवर्स मिले, ज़्यादा ओवर मिले हैं, 20 से 25 ओवर मिले और سامنے رنز بھی کیے ہیں دونوں میچوں میں 50 کیے ہیں, تو میرے لیے مشکل نہیں ہے, مجھے بلکہ وہ بھی ایزی ہے کیونکہ آپ اوپر سے نیچے آئیں گے, پھر ہیٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے, نہ کہ ایک دم سے جا کے لاسٹ اوور میں ہیٹنگ کرنا. کوشش یہ کرتا ہوں جو بھی رول دیتے ہیں اس کے مطابق کھیلوں, اور آپ دیکھیں گے لاسٹ میرا جو کیریئر ہے کرکٹ کا وہ ایز اے اوپنر ٹاپ اوپنر اسٹارٹ ہوا تھا, تو اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ نمبر 4 ہو 5 ہو 6 ہو, مجھے کنڈیشن کے حساب سے یوز کرتی ہے مینجمنٹ کوچنگ, جو ہمارے کیپٹن ہے سفران بھائی وہ کنڈیشن کے حساب سے یوز کرتے ہیں. آپ میچ سیریز میں بھی دیکھا ہوگا کہ لاسٹ اوور رہتے ہیں تو 2-3 آؤٹ ہوئے ہیں تو مجھے 4 پہ بھی بھیج دیا 5 میں بھی, وہ نمبر نہیں دیکھتے کنڈیشن جو دیکھتے ہیں میچ کی اوورس کتنے باقی ہیں اس حساب سے یوز کرتے ہیں.
یہ تھے پاکستانی کرکٹر آصف علی. ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر, جہاں اسپین کے شہر اندلس کے نزدیک ایک قدیم شہر مدینۃ الزہرا سے متعلق سٹوری موجود ہے. یہ شہر محض 70 برس آباد رہا. یہ شہر کس نے آباد کیا اور کیوں اتنی جلدی اجڑ گیا, یہ پڑھنے کے لیے آپ کو آنا ہوگا bbcurdu.com پر. پشتو موسیقی کے کئی رنگ ہیں اور اس کا ہر رنگ نرالا ہے, لیکن اب پشاور کے کچھ نوجوان پشتو موسیقی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسے جدید ریپ موسیقی کا تڑکا لگا کر ایک نئے رنگ میں پیش کر رہے ہیں. This is echo what you got. UDE we've been gone for too long, but I know you can feel me breathing fire like a dragon eating raps for the day that you must. ہمارے بینڈ میں بیسکلی ہم تین ممبرز ہیں, ایک میں ہوں شاکر عالم خان, شمائل عالم خان ویسٹ بیٹس,
اور تیسرا ممبر جو ہے وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, اس کا نام ہے مصطفیٰ کمال پارٹی ریکر. ہمارا بینڈ ہے 42 پختون کور, اس میں ہم کرتے ہیں پشتو ریپ, انگلش ریپ اور ہپ ہاپ. Padenor osulmuno kesa shershum tameda gira mayare kapira musliman dasna olympic medavina.
Hum bachpan se انگلش سانگز اور یہ سنتے تھے, تو جب ہم نے ریپ سنا تو ہم بڑے انسپائرڈ ہوئے, تو 2004-05 میں ہم نے اسٹارٹ کیا ریپنگ, لیکن اس ٹائم انگلش میں ہم کر رہے تھے.
ہم نے کہا کہ ہم اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کریں, پشتو کو اور آگے لائیں, تو ہم نے پھر پشتو ریپ اسٹارٹ کر دیا. کافی لوگ اپوز کرتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ پشتو میں ریپ آ جائے, لیکن بات یہ ہے کہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے مین اسٹریم میوزک اس کے ساتھ زیادہ کنیکٹ کر سکتی ہے, اور اس میں اگر ہم میسج لائیں اور وہ بھی پشتو میں, تو آبویسلی وہ زیادہ اسپریڈ ہوگا اور زیادہ لوگ کنیکٹ کریں گے اس سے. انگلش ہمیشہ ہماری میوزک کا پارٹ رہا ہے, کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ انگلش کے تھرو ہم براڈر آڈینس کو ہم پہنچ سکتے ہیں. ہماری ایز سچ کوئی نہیں ہے فیملی بیک گراؤنڈ میوزک میں, ہم خود ہی بھی, بلکہ میں بھی الیکٹریکل انجینئر ہوں, میرا بھائی آرکیٹیکچرل انجینئر ہے, اور مصطفیٰ جو ہے اس نے بی ایم بی اے کی ہے.
پشتو ریپ ہم نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا, ہم پائیونیئرز ہیں پشتو ریپ کے, کیونکہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے لیے کوئی فوٹ پرنٹ کچھ بھی نہیں تھا, یا ہم کسی کو لک اپ کرے کہ یار ہم یہ بندہ کر رہے اس کو ہم اچھا بلڈ کر لیا, اس نے ایک بات سیٹ کی ہے, ہمارے ساتھ وہ بات شاید کچھ بھی نہیں تھا. اس طرح
ہمارے ویڈیوز ہمارے ساری فیملی نے دیکھی ہے, ہمارے گاؤں میں جو ہیں انہوں نے بھی دیکھی ہیں ساری ویڈیوز, اور سب جانتے ہیں ہمارے ابو نے بھی دیکھی ہے. کافی مرتبہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ہمارے ابو چینل چینج کر رہے تھے اور بیچ میں ان کی انٹرویو آ گئی, پھر مجھے بلایا کہ ذرا یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. پہلے پوسٹ کیا تھا انہوں نے ہمارے ابو نے, لیکن اب سپورٹ کرتے ہیں وہ.
اور اب سامعین کی آرا پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو عبداللہ فاروقی کا سلام. کرکٹ ورلڈ کپ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے, لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایک سامع عبد المجید دشتی نے حکومت سے اپنا شکوا یوں بیان کیا ہے.
وفاق نے بلوچستان کو آزاد معاملے میں نظر انداز کیا ہے. بلوچستان کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو قومی ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا, جبکہ بلوچستان میں قابل اور باصلاحیت کھلاڑیوں کی کوئی کمی نہیں. बलूचिस्तान के काबिल और जैन खिलाड़ियों को ओलंपिक गेम क्रिकेट कौमी टीम में शामिल किया जाए। कौमी क्रिकेट टीम में एक भी बलूचिस्तानी खिलाड़ी शामिल न होना इंतहा दुख और अफसोस की बात है। क्या पूरे 72 सालों में एक भी काबिल या बाखलाहियत खिलाड़ी बलूचिस्तान में मौजूद नहीं।
सूबे बलूचिस्तान के जिला केत से एक और सामने जहाज़ेब नासिर अपने ही सूबे के वजीर आला की तवज्जो तालीम जैसे अहम शोबे की जानिब मबजूल कराना चाहते हैं।
जब तक इनकी हुकूमत आई अब 9 महीना होने को है, कोई भी ऐसी संजीदगी जाहिर नहीं की हुई है जिससे हमारी तालीमी बेहतरी हो। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने काबीना से मिल बैठ कर हमारे तालीमी बेहतरी लाए, रिफॉर्म लाए। उसको चाहिए कि बलूचिस्तान में मौजूद टैलेंट की हौसला अफजाई करे।
बलूचिस्तान के बाद सूबे सिंध का रुख करते हैं जहाँ से खातून मरजान फातिमा का कहना है कि बीबीसी ने अपनी एक खबर में जानिबदारी का मुजाहरा किया है।
मैंने आपका इंटरव्यू देखा था उम्मे रुबाब चांदी जो है उनके हवाले से, सिर्फ वो बींग अ गर्ल जो है वो आपको एक करी है तो जो है आप सिर्फ उसी का मौके सुन रहे हैं क्योंकि वो शी इज अ लेडी और वो फिर किसी पे भी उठ के किसी भी शरीफ इंसान पे जिसका ना कसूर हो ना कुछ उस पर कुछ भी बोल दे, पर सिर्फ इसलिए है कि वो एक गर्ल है और वो फाइनेंशियली इतनी साउंड नहीं है तो आप सिर्फ उसी को ही यस कर रहे हैं। तो ये बड़ा पेनफुल है। कम से कम हम बीबीसी को इस तरह से नहीं समझते थे कि बीबीसी तो बड़ी जो है बैलेंस्ड एक अप्रोच रखने वाला न्यूज चैनल हम समझते हैं।
तो इसका जवाब हाजिर है मरजान फातिमा और ये जवाब दे रहे हैं बीबीसी के कायम मुकाम एडिटर आसिफ फारूकी।
देखिए मरजान, अगर आपने वो इंटरव्यू गौर से सुना हो तो जिन साहिबान का आप नाम ले रही है उनका नाम उस स्टोरी में हमारी कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो राइट टू रिप्लाई का जो उसूल है वो वहां पे लागू होता है जहां पे आप किसी का नाम लें। तो हमने उन लोगों का नाम उसमें से निकाल दिया था जिनको उम्मे रुबाब ने एक्यूज किया था। दूसरी बात यह है कि ये स्टोरी जो थी ये उस केस के बारे में नहीं थी या उन इल्जामात या उसके बारे में नहीं थी, ये स्टोरी थी उस लड़की की अपनी स्ट्रगल के बारे में, इंसाफ के हुसूल के लिए जो वो कोशिश कर रही है। वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी कि आप अगर अकेली भी हैं, खातून भी हैं, यंग हैं, इसके बावजूद आप स्ट्रगल करती हैं, कोशिश करती हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इट वाज अबाउट दैट।
चलें अब सूबे खैबर पख्तूनख्वा चलते हैं जहां जिला तोरगर से एक सामे नजर मोहम्मद इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने की दावत दे रहे हैं।
मेरा पैगाम है हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए। मैं सबसे पहले तो उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसे अपील करता हूँ कि ये मसले खत्म कर दो, ये नाम निहाद दिवाली बर्लिन जो है इसको गिरा दो और इस इलाके में हमारी सरसों के साग और ज्वार की रोटी की ये दावत कबूल करके पाकिस्तान के दौरे पे आ जाओ। हमारी इस इलाके में जो है ना आपके बहुत बुधा के बहुत मुकदस मकाम है। इस तरह दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से मिल जाएंगे और ये खून बहुत बह चुका है।
अपनी राय का इजहार करने के लिए आप पाकिस्तान भर से लैंडलाइन के जरिए हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0800-222-75 यानी 0800-222-75। इसी के साथ ही अब्दुल्ला फारूकी को इजाजत दीजिए।
ईद के मौके पर हर घर में रिवायती खाने और पकवान बनते हैं लेकिन शायद बहुत कम घराने ऐसे हैं जहां हलवा पूरी बनती है। ये कैसे बनती है सुनिए आसिया खातून से।
ईद के मौके पे हम स्पेशल हलवा पूरी हम बनाते हैं। ये हमारा कई दाइयों से चला आ रहा है, हमारी नानी अम्मा मम्मा ये सब बनाते चले आ रहे हैं, हमने अपनी मम्मा से ही सीखा है। हमारा कल्चर भी है कि हमारे पूरे पंजाब में पाकिस्तान में ये हलवा पूरी बनाया जाता है खुशी के मौके पे। पूरी बनाने के लिए हम पहले एक पैन में हम मैदा लेते हैं, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता गूंद देंगे, फिर उसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करते हैं, फिर हम उसको नकड़ाई में तलते हैं हल्का ब्राउन। हलवा बनाने के लिए हम एक पैन में 1 किलो सूजी लेंगे, उसमें आधा किलो ऑयल या घी डालेंगे तो उसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे। सूजी ब्राउन करने के बाद हम उसमें पानी चीनी ऐड करने के बाद हम उसमें दूध भी ऐड करेंगे।
सरबीन यहाँ इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे उबैद मलिक, प्रोड्यूसर नासिश फैज, स्टूडियो मैनेजर थे सरारुल हक, नादिया सुलेमान समेत पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आखिर में आलमी खबरों की सुर्खियां सुनिए साथ सुहेल से।
अफ्रीकी काउंसिल ने सूडान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। काउंसिल के हुकाम का मौकिफ है कि बहरान से निकलने का ये वाहिद हल है। सूडान की हुकूमत ने तस्लीम किया है कि पीर को होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों 50 मुजाहिरीन की हलाकत हुई। जर्मनी की एक अदालत ने सीरियल किलर नील्स होगल को उम्र कैद की सजा सुना दी है। 42 साल नील्स होगल ने दौरान मुलाजमत गलत इंजेक्शन लगाकर 85 मरीजों की जान ली थी। डी डे के 75 बरस मुकम्मल होने के दूसरे दिन की यादगारी तकरीबात में शिरकत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों नॉर्मेंडी में मौजूद हैं। ये तकरीबात दूसरी आलमी जंग के दौरान इस अहम पेशरफ्त के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्कद की जा रही है। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के जिला हरनई में एक बम धमाका हुआ है जिसमें 2 अहलकार हलाक हुए हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।
The biggest cricket event has begun. Yes, ICC KK World Cup 2019 आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट का सबसे बड़ा शो नॉर्थ अमेरिका में। हम आपको देंगे लेटेस्ट न्यूज, इनसाइड एंड आउटसाइड अपडेट्स, मैच एनालिसिस, टीम एंड प्लेयर स्टैट्स, ट्रिविया क्वेश्चन, सरप्राइज इंटरव्यू एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। देखिए मैच पॉइंट रोजाना रात 9 बजे डॉक्टर अदनान के साथ सिर्फ ई आवाज टीवी पर, फेसबुक ई आवाज या फिर eawaz.com।
आप सुन रहे हैं WTR 770 साज़ आवाज़ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारे रेडियो और टीवी के सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या डाउनलोड कीजिए फ्री ई आवाज ऑफिशियल ऐप। ई आवाज टीवी आपका अपना चैनल है। आप ई आवाज टीवी को तमाम IPTV बॉक्सेस पर फ्री देख सकते हैं। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ई आवाज। फीडबैक और एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉल कीजिए 6478986245 6478986245।
Fun, food and entertainment.
Is that Mississauga Halal Food Fest?
Yes, 6th annual Taza Mississauga Halal Food Festival.
Presented by Watan Kebab, Universal Real Estate and Mandi Guys.
Fun food mausiki Pakistan ke number fankar Fakhir ke saath ek sham.
Mahive, o teri aadati hai re.
Taza Halal Food Festival 416-662-7861.
June 14 aur June 15 Friday and Saturday Taza Mississauga Halal Food Festival at Celebration Square Mississauga.
Also featuring Pakistani Mango Festival.
Absolutely free admission.
For sponsorship call Amir Shamsi
416-662-7861.
Are you self-employed and having trouble getting a mortgage? Bank declined your mortgage? Are you in high interest credit card debts? Is your bad credit stopping you to get mortgage? Do you need emergency mortgage? Only one answer for all these questions. Call Harry Thorne, principal broker of Majestic Mortgage.
For Majestic service, call Majestic Mortgage. Your best interest is guaranteed. 647-228-1000.
रॉजर की बेस्ट प्राइस और प्रमोशन के लिए कांटेक्ट करें वकार खान, जो रॉजर की एम्प्लॉय हैं और 13 साल से ज्यादा तजुर्बा। रॉजर की 3 सर्विसेज का बंडल ऑफर जिसमें टीवी विद HD रिसीवर, हाई स्पीड इंटरनेट, वायरलेस वाईफाई मॉडम, फोन कॉल विद लोकल कॉलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस भी मौजूद जिसमें अनलिमिटेड US कनाडा कॉलिंग और पाकिस्तान के 930 मिनट। टीवी, फोन, इंटरनेट और रॉजर की लेटेस्ट होम सिक्योरिटी डील्स के लिए राब्ता करें वकार खान 6478648000 6478648000।
एशियन फूड सेंटर 9057931338। आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टेबल्स, ब्रेड डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। ऑर्डर नाउ फॉर इन स्टोर फ्री पिकअप 9057931338। होम डिलीवरी इज ऑल्सो अवेलेबल। एशियन फूड सेंटर 9057931338। एशियन फूड सेंटर।
घर लेना हो या फिर लिस्ट करना हो, हर फार्म मुजफ्फर को कॉल करो।
इन्वेस्टमेंट करने का घर हो इरादा,
हर फार्म मुजफ्फर को कॉल करो।
बरसों से जाना पहचाना काबिले एतमाद नाम रियल स्टेट की किसी भी जरूरत के लिए कॉल कीजिए 6478986245 6478862 सिटीज के रियल स्टेट की।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसेमंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
खाने का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है, बनाया भी कितना लजीज है।
ये सब कमाल है किराना हट का। दावत हो तो किचन बहुत खूब करते हैं और अगर वैसे बाहर खाना खाने को दिल चाहे तो समझो हर उम्र की पसंद किराना हट पर मौजूद। और हाँ, एक और बात, इस खाने के बाद गारंटी नो हार्ट बर्न।
किराना हट का मुझे भी नंबर दें, हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है।
किराना हट मिसेस सागा में, बस कॉल कर लीजिए 9054058383, 4058383।
ड्रीम्स हेल्प मेक माय वेडिंग परफेक्ट। आई हैड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड एंड दे मेड इट पॉसिबल।
जी हाँ, ये है ड्रीम कन्वेंशन सेंटर, जिनके पास है 3 शानदार बॉल रूम्स, 50 से लेके 1300 अफराद के बैठने की जगह, हाई क्वालिटी इंटरनेशनल कुजीन, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडियो विजुअल, इवेंट कोऑर्डिनेशन, हाईली ट्रेन स्टाफ, खास दिन को बनाए यादगार ड्रीम कन्वेंशन सेंटर के साथ। ऑनलाइन बुकिंग या फिर आ जाएं ड्रीम कन्वेंशन सेंटर, 75 Hedgedale Road, ब्रैम्पटन, 9054515100, 9054515100।
हैदराबादियों के बनाए हुए असली हैदराबादी खाने एट बेक्स ग्रिल,
जिसके खाने पे आ गया दिल। बेक्स ग्रिल, द टेस्ट दैट थ्रिल्स। बेक्स ग्रिल,
खुद के पीसे हुए खालिस मसालों से बने लजीज हैदराबादी खाने बेक्स ग्रिल, लुखमी चिकन 65 और हैदराबादी बिरयानी का तो हेड ऑफिस।
धूम मचाती खाना हैदराबादी, बेक्स ग्रिल,
124 Kennedy Road in Brampton, 905-230-3243.
आपका अपना फैमिली प्रोग्राम मामा ते ठंडिया छावा,
इनाम ही इनाम, तफरी ही तफरी।
मामा ते ठंडिया छावा, एक शाम अपनी खूबसूरत माओ के नाम कीजिएगा पिछले 13 साल से। मामा ते ठंडिया छावा,
June 14th Saturday 6:30 PM,
Woodbine Banquet and Convention Hall, कॉल राणा सुहेल ऑफ वीकली खबरनामा।
अपनी निशस्तें आज ही बुक कराइए 416-312-6252, 416-312-6252।
से करता है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है।
कितना इसको
جس کو بہلاتا ہوں, کتنا اس کو سمجھاتا ہوں, کتنا اس کو بہلاتا ہوں. نادان ہے کچھ نہ سمجھتا ہے, دن رات یہ آہیں بھرتا ہے.
میرا دل سے کرتا ہے, میرا دل بھی کتنا پاگل ہے, یہ پیار تو تم سے کرتا ہے. پر سامنے جب تم آتے ہو, پر سامنے جب تم آتے ہو, کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے میرے ساجن. میرا دل بھی کتنا پاگل ہے, یہ پیار تو تم سے کرتا ہے. میرا دل بھی کتنا پاگل ہے, یہ پیار تو تم سے کرتا ہے.
Oh,
पे तो कर ले यकीन आपस जाने बाहर। वादे वफा पे तो कर ले यकीन आपस जाने बाहर। सच्ची मोहब्बत उसी को कहे माने कभी जो नहार। आ मेरी बाहों में दिल की पनाहों में कह दे जो है कहना।
मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।
आशिक ऐसा कहाँ होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक ऐसा कहाँ।
इश्क की बाजी न हारेंगे ऐसे देंगे शरम मिलते
सनम।
दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।
मौका मिलेगा तो हम बता देंगे
कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे
तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। ये काली काली आँखें ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल। ये काली काली आँखें ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल।
देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल।
ये का
काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल।
मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली मैं मिला, दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे। दिल को जलाने लगी, दिल रुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी, गैरों की बाहों में इठला के जाने लगी, ये तेरी बेरुखी मुझको सताने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा, दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे, उसे में लाल ना कर ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। मेरे आजा तू देखा कटे प्यार का टिकट, ना तू सुल पे झटक ना तू पैर पटक, अरे ऐसे ना मटक दिल गया है भटक।
चेहरे पे तेरे सनम लैला की है शोखिया, हीर से बढ़ के है आंखों की ये मस्तियां, जूलियट की तरह होंठों पे है सुर्खियां, देख ले खुद को तू नजर से मेरी जाने जा, देखी जो तेरी आदा मैं फिदा हो गया, सीने से लग जा जरा, जीने का आए मजा, जीने का आए मजा। ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये झुकी झुकी पलकें, ये गोरी गोरी बाहें, हम क्यों ना तुम्हें चाहें,
ऐसा तो हमने पहले देखा नहीं कमाल।
ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। करम मेरी जानम दुआ करना।
नजर करा।